लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारथो यश्चे हकारमपि. That life's desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be the goal of one's works. I would like to thank all of you for kindly coming to Radha Gopinath Temple tonight and welcome you all.
मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं कि आप सब यहां आज मंदिर में पधारे हैं.
We are celebrating this evening the Chudakaram Sanskar of the son of Kamal and Menaka, Shiva.
आज रात हम चूड़कर्म संस्कार सेलिब्रेट कर रहे हैं कमल जी और मेनका जी के सुपुत्र शिव जी की.
I would like to speak for just a few minutes about the real purport and essence of these Vedic samskaras.
मैं आज थोड़े शब्द जो वास्तविक अर्थ है इन वैदिक संस्कारों का इनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा.
According to the Dharma Shastras, there are 40 samskaras performed for all civilized human beings.
Dharma Shastras में ये बताया गया है कि सभ्य मानवता का सभ्य मानव के लिए 40 संस्कार किए जाने चाहिए.
And 10 of them are prominent.
और इनमें से 10 संस्कार जो हैं वो प्रमुख हैं.
Originally, all of these samskaras were in the spirit of the Vedic Shastras.
पहले के जमाने में जो भी शास्त्र थे वो शास्त्रों के सार के अनुसार किए जाते थे.
Vedanta Sutra says, Athatho Brahma Jigyasa.
वेदांत सूत्र में बताया गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा.
Now you have taken this very rare and precious human birth. Its one and only purpose is self-realization.
अब तुम्हें ये बहुत ही मूल्यवान मानव देह प्राप्त हुआ है. इसका एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना.
नायाम देहो देह बजम नुलैकाय खस्तान कमान आर्हति विभुजम जय तपोदव्यम पुत्रकयेन सत्वम सुदेर्यस्यम ब्राह्मसोक्यम त्वनंतम. That the animals, the dogs and the hogs, they are spending their lives enjoying their senses, mating, having children, protecting their children, nourishing their children. Human life is meant for something more than that.
Srimad Bhagavat ka ek shlok batakar Maharaj ji ne bataya ki pashu jo hain unke jeevan mein to sirf ahar nidra bhay maithun hai. लेकिन मानव जीवन इससे कहीं अधिक है. मानव जीवन सिर्फ इन चार चीजों के लिए नहीं है.
This human life is meant to understand and realize the true glory of the soul.
मानव जीवन इसलिए हमें दिया गया है कि हम आत्मा की महिमा को पहचानें.
But today, human civilization is simply a sophisticated animal civilization. People are living through their lives and raising their families simply for the purpose of selfish enjoyment and preservation, without truly striving into the goal of life, which is to realize our relationship with God.
आज की जो आधुनिक सभ्यता है, ये सिर्फ एक चमक धमक का पशु जीवन है, और इसमें ये मानव जीवन में कोई नहीं जानता कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के संबंध हमारा साथ संबंध क्या है उसे पहचानना.
We are so interested in giving our children and ourselves education, but the basic principle of all education is to understand who we are.
हम इस हेतु बहुत आतुर हैं कि हमारे बच्चों को हम अच्छा शिक्षण दें, लेकिन सच्चा विद्या तो यह है कि हम जाने कि हम कौन हैं।
We are not this material body, which is subject to death, birth, old age, disease, and death.
हम ये भौतिक शरीर नहीं हैं, जो कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से प्रभावित होता है।
न जायते मृयते वा कदाचिन नयान भूत्वा भावितवानः। That the eternal soul, which is eternal, full of knowledge and full of bliss, is the source of life, the true self within the body.
जो आत्मा है, वही जीवन का कारण है, जो कि शरीर के अंदर निवास कर रहा है।
And this understanding liberates one from all suffering.
और ये ज्ञान प्राप्त करने से हम दुख के परे आ जाते हैं।
And it is explained that the duty, the first and most sacred duty of a parent is to raise the child in such a way that that child can be liberated from the sufferings of birth and death and realize his eternal blissful nature.
तो माता पिता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि वो अपने बच्चे को ये जन्म और मृत्यु के दुख के परे कर दे।
So these samskaras are all ways and means by which civilization is organized so that every living being from the beginning to the end of their lives are making progress toward the purification of the heart and realization of the soul.
तो ये संस्कार इसलिए हैं कि धीरे धीरे से जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय की शुद्धता हो और हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते चलें।
But unfortunately, the real purpose behind these samskaras is practically forgotten in this great land of India.
लेकिन दुर्भाग्यवश इन संस्कारों का जो मूल तत्व है, इनका सत्य जो हेतु है, वो हम भारतवर्ष में भूल चुके हैं।
In fact, the true heritage of this great land has been practically raped by foreign invaders.
जो भी विदेश से यहाँ आकर हमला कर चुके हैं, उन्होंने इस सभ्यता को बिल्कुल नष्ट कर दिया है।
European Indologists who were Christian missionaries whose only singular purpose of coming to India was to convert all Hindus to Christians, they became the foremost Sanskrit scholars in the universities in India as well as abroad.
अब तक जो भी भारतवर्ष के ऊपर भारत के इतिहास के और संस्कृत भाषा के इतिहास का जो अभ्यास करते थे, वो वास्तव में क्रिश्चियन थे, पश्चिम देशों से आए थे, और उनका उद्देश्य एकमात्र था कि किस तरह से सब हिंदू जाति को हम क्रिश्चियन बनाएं।
And India being under British rule for long, long years, was confined that the authorized educational institutions taught Sanskrit and Indian history according to the teachers of Christian missionaries.
तो अंग्रेजों के शासन के समय यह नियम बनाया गया था कि संस्कृत भाषा और भारतीय इतिहास उस दृष्टि से पढ़ाया जाए जैसे कि ये क्रिश्चियन मिशनरी लोगों ने यह निर्णय किया था।
They wanted to teach that Christianity was in every way superior to Hinduism.
उनको यह बताना था कि क्रिश्चियन धर्म जो है वो हर तरीके से हिंदू धर्म से अच्छा है।
That all the philosophy, all the history, and all the rituals of the Vedas were superstitious, mythological, and simply no function whatsoever that can in any way help man.
वो ये बताना चाहते थे कि वेदों में जो भी दर्शन हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, ये वास्तव में सब काल्पनिक हैं और इनसे कोई मानव जीवन के लिए फायदा या लाभ नहीं हो सकता है।
And to this day, practically every textbook on Indian religion, philosophy, and Sanskrit throughout the world, and even prominent in India, is written by these Indologists or the disciples of these Indologists.
और आज तक जो भी सारे बड़े किताबें हैं, जो कि भारतवर्ष के इतिहास, फिलॉसफी इत्यादि पर लिखे गए हैं, ये ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरी लोगों के द्वारा लिखे गए हैं।
Them along with the smart Brahmins, who were Brahmins by caste and profession only, who simply utilized their learning and their birth to exploit people, they performed the Vedic rituals and the samskaras simply as a business.
ये स्मार्ट ब्राह्मण जो थे वो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण थे और संस्कार वो लोग इसलिए करते थे कि वो दूसरे समाज को जनसाधारण को अपने वश में कर ले।
After years, practically centuries of such various forms of exploitation, the true understanding of Hinduism and its rituals and its pujas have been practically lost in this great land of India.
तो इस तरह का लोगों ये सभ्यता का दुरुपयोग होने से आज तक जो इन संस्कारों का मूल हेतु है वो हम भूल गए हैं।
And now these sacred rites called the samskaras are simply performed as social functions.
और आजकल ये जो संस्कार हैं वो सिर्फ सामाजिक ऐसे फंक्शंस की तरह मनाए जाते हैं।
Nobody knows or cares what the Brahmins are saying.
किसी को ये दिलचस्पी नहीं है ये जानना कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं।
Usually even the Brahmins don't care or know what they're saying.
आमतौर से स्वयं ब्राह्मण भी नहीं जानते कि वो क्या मंत्र बोल रहे हैं।
It's a profession for them.
उनके लिए ये तो आमदनी कमाने का एक तरीका है।
And it's a social function for everyone else.
और दूसरे लोगों के लिए ये तो एक सामाजिक फंक्शन है।
This is the sad state of affairs in this land of dharma, Bharatvarsha.
यही बुरी हालत है ये पुण्य भूमि भारतवर्ष में।
The heritage of all of our great forefathers here in India has been raped, stripped, and made into nothing but a useless social function.
तो हमारी सारी जो सभ्यता है आज पूरी तरह से नष्ट हो गई है और सिर्फ एक साधारणतः सामाजिक फंक्शन के तौर से बन गया है।
How sad.
बहुत दुर्भाग्यशाली है ये।
So tonight we would like to just speak briefly about the real spirit and meaning of these samskaras.
तो आज शाम को हम ये बात करना चाहेंगे कि संस्कारों का सही उद्देश्य क्या है।
They are meant to be deep offerings of love by the people who are performing them.
ये वास्तव में ये संस्कार जो है प्रेम के भेंट होने चाहिए जो कि जो लोग कर रहे हैं वो भगवान की ओर प्रेम का भेंट के रूप में।
You don't need samskaras to get a good education, a lot of money, good food and material success for your child.
हमें हमारे बच्चों के लिए अच्छा भोजन अच्छी शिक्षा ये सब प्राप्त करने के लिए संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं है।
And the evidence of that is look at the western countries.
और इसका प्रमाण यह है कि आप पश्चिम देशों की
The children are brought up with a much higher form of education.
वहां पर बच्चों को कहीं अधिक ज्यादा शिक्षा प्राप्त होती
है। They have much greater money, much greater science, much greater technology, every type of material facility you could imagine, and they're performing no samskaras.
और पश्चिम देशों में वहां के बच्चे जो हैं उनके पास ज्यादा धन ज्यादा शिक्षा हर तरह के भौतिक सुविधाएं और साधन ज्यादा हैं।
What in the world are we performing these rituals for material success when the people who don't do any of it have the most?
तो हम फिर ये संस्कार क्यों कर रहे हैं जबकि जो लोग ये संस्कार नहीं कर रहे हैं उनके पास सारी भौतिक चीजें हैं।
Certainly it is our duty as parents to raise our children to be educated properly, cultured properly and be successful and prosperous.
हाँ ज़रूर माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य तो है ही कि हमारे बच्चों को हम अच्छी तरह से शिक्षा दें अच्छी तरह से बड़ा करें।
But these samskaras are meant at the most critical stages of a person's life to purify their hearts and minds and prepare them for deeper realizations in God consciousness.
लेकिन ये संस्कार बच्चे के विशेष आयु के विशेष समय में किए जाते हैं हृदय के शुद्धिकरण के लिए ताकि उसे भगवत साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़े।
The Garbhadan samskar is meant that the husband and the wife are fully in meditation and concentration and God in prayer. That at the time of conception, a holy and divine being takes shelter of their womb to do good for the world.
गर्भाधान संस्कार का मतलब है कि पति और पत्नी संतान उत्पन्न करने के पहले इस विषय पर ध्यान करें कि जो पत्नी के गर्भ में जो बच्चा होगा वो दिव्य स्वभाव का होगा और सारी दुनिया के उद्धार के लिए काम करेगा।
And originally, all the rituals and yajnas were meant to create an atmosphere by which the consciousness was proper for a proper holy being to take birth.
और इन यज्ञों का ये सारे संस्कारों का उद्देश्य ये था कि ऐसा एक पवित्र वातावरण बने जिसमें ये सब अच्छे कार्य हो सकें।
The name-giving samskara was, to dedicate the child as an offering to God. That is actually the purpose of every samskara, to offer their child's life for the protection and the mercy of the Supreme Lord.
नामकरण संस्कार का ये सच्चा उद्देश्य है कि हम हमारे बच्चे को भगवान को अर्पण कर रहे हैं।
But it is not to be done ritualistically. It is meant to be done with a spirit of love, compassion, and devotion.
लेकिन ये संस्कारों को सिर्फ करने के हेतु नहीं करना चाहिए, ये प्रेम से करना चाहिए, भक्ति भाव से किए जाने चाहिए।
If we're offering our child at a critical time of its life before God, praying to God to protect it, to nourish it, to make that child flourish in life, we have to perform it in a way that our devotional life is conducive to appealing to God to do that.
अगर हम ये संस्कारों के माध्यम से भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का जीवन अच्छे बनाए, तो अगर भगवान को ये इच्छा पूरी करनी है तो हमें कम से कम भक्ति भाव से तो ये संस्कार करने चाहिए।
If we celebrate the samskara by engaging in immoral activities, which gives us a negative outlook in the presence of God, how are we doing any good for the child?
अगर हम ये संस्कार मनाते समय कोई पाप कार्य कर बैठें, तो फिर हम हमारे बच्चे के लिए कोई अच्छा कैसे कर रहे हैं?
My parents are Americans.
मेरे माता पिता अमेरिकन हैं।
As most Americans, they're extremely materialistic.
और जैसे कि वास्तव में अमेरिकन ज़्यादातर होते हैं, वो बहुत भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं।
They're successful materially and they're very pious in many ways as well.
भौतिक दृष्टि से काफी सफल हैं और भौतिक दृष्टि से पुण्यवान भी हैं।
When they came and visited this temple and understood what the purpose of life is, their whole hearts changed. Now whenever they have a grandchild, they ask me to perform samskaras for its purification.
जब वो ये मंदिर में पहली बार आए तो यहाँ का भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और जब भी उनका कोई पोता होता है तो मुझे आके बुलाते हैं कि उनका कोई संस्कार करें।
And they invite all the relatives.
और सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं।
And I tell them the same thing I'm telling all of you.
और मैं उनको वही बात बताता हूँ जो कि मैं आज आपको
बता रहा हूँ। That we've come here for the benefit and the spiritual purification and protection of this child, not for our own enjoyment. Why are we so selfish? We come to for our own enjoyment. The celebration is to invoke the mercy of God for this child's benefit in life. Do we care for the child? Or do we care for ourselves? I'm sorry.
Vastav mein ये संस्कार मनाने का उद्देश्य है, उद्देश्य होना चाहिए कि हम पुत्र की भलाई चाहें, लेकिन क्या हम यह संस्कार सिर्फ हमारे आनंद हमारे भोग के लिए कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे के लिए हमें कोई भी अच्छे विचार नहीं है?
And what is the way by which we can invoke the mercy and protection of God upon this innocent child?
ये किस तरह से हम भगवान की कृपा को हम हमारे एक बच्चे की ओर हम आकर्षित करें.
By celebrating the most simple and wonderful sacrifice of this age.
आज का ये इस युग का जो संस्कार है उसको मनाने से.
And that is the chanting of God's name.
और वो है भगवान नाम का जाप और कीर्तन करना.
You know, when there is a yagya or homa, the real essence of that homa is that the priest is chanting God's name with every offering or oblation.
जब भी कोई होम या यज्ञ होता है तो उसमें यह होना चाहिए कि जो भी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं हर एक वस्तु अर्पण करने के साथ भगवान नाम का जाप करता है.
Without the name of Vishnu, no yagya has any meaning.
श्री विष्णु के नाम के बिना यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं रहता.
But why should we leave it to some paid Brahmin priest? We could all offer blessings of God upon the child by sincerely chanting the holy name with the prayer that the benefits of our chanting are offered for this child's divine welfare and life.
तो ये कार्य हम किसी ऐसे ब्राह्मण को क्यों दें जिन्हें हमें कोई पैसा देना पड़ता है. खुद अगर हम भक्ति भाव से भगवान का नाम का जाप और कीर्तन करते वक्त करते हुए हम ये हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भक्ति का बच्चे का लाभ होगा.
At each of these critical stages of life where there's great transformation, we want to invoke the Lord's mercy, love, and protection upon our loved one.
तो बच्चे के ये जो विशेष विशेष जो समय है उसके जीवन में ऐसे समय पे हम ये चाहते हैं कि भगवान का रक्षण और भगवान की कृपा बच्चे पे आए.
And this is why in the tradition of real samskar we come together for these ceremonies.
और यही कारण है कि ये संस्कारों के लिए हम सब एकत्र होते हैं.
And if we actually love the child, that is the most joyous, wonderful and happy way of celebrating. By doing something wonderful for someone we care about.
और अगर वास्तव में हम बच्चे से प्रेम करते हैं तो हम ये संस्कार को इसी तरह से मनाएंगे.
Of course, we very seldom hear these philosophical explanations during these ceremonies during these modern days.
लेकिन बहुत कम ऐसी बातें ऐसे संस्कारों में आजकल सुनने में आता है.
But this is the essence, the truth, the meaning and the tradition that is the real wealth and treasure of this land of India.
लेकिन यही सत्य यही सार है जो कि भारतवर्ष का सच्चा धन है.
यज्ञ means sacrifice. Sacrifice means to give of ourselves as an offering for the betterment of another and for the pleasure of God.
यज्ञ का मतलब है कि हमें अपने आप को दूसरे के भलाई के लिए और भगवान के लिए अर्पण कर देना.
In the English language, the word sacrifice means to make something or someone sacred.
अंग्रेजी भाषा में जो यज्ञ का शब्द है sacrifice, उसका मतलब है कि किसी चीज या व्यक्ति को पवित्र बनाना.
We want this child's life to be sacred.
हम ये चाहते हैं कि बच्चे का जीवन पवित्र बन जाए.
We should not see by material standards.
हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए.
There's a story in Mahabharat just before the battle of Kurukshetra. Arjuna was planning to go to Dwarka to ask Lord Shri Krishna if he would be on the Pandava's side for the war that was about to come.
एक प्रसंग है महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले अर्जुन द्वारका को रवाना होने ही वाले थे श्री कृष्ण को यह पूछने के लिए कि क्या वो युद्ध में उनके पक्ष में आकर लड़ाई करेंगे.
And Duryodhana, he found out by his spies, because he had very good spies, that Arjuna was going to Dwarka to try to get Krishna to be on his side.
और क्योंकि दुर्योधन के पास बहुत ही अच्छे जासूस थे, तो उसे पता चल गया कि अर्जुन किस हेतु द्वारका जा रहा है.
So Duryodhana, who was very materially expert at calculating everything, he took his chariot and went full speed ahead to Dwarka.
तो भौतिक दृष्टि से दुर्योधन बहुत निपुण था, इसलिए अपने रथ पर सवार होकर बहुत ही तेजी से द्वारका की ओर निकल पड़ा.
He knew that Krishna is a gentleman, and the etiquette is whoever reaches him first, he's going to have to fulfill his desire.
वो जानता था कि कृष्ण एक सज्जन हैं, और जो भी कृष्ण के पास पहले पहुंचेगा, उसी की इच्छा श्री कृष्ण पूरी करने वाले हैं.
So Duryodhana reached Dwarka first, but when he went to Krishna's house, Krishna was sleeping.
तो दुर्योधन पहले द्वारका पहुंचे, लेकिन वो श्री कृष्ण के घर पहुंचे तो श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे.
And soon after Arjuna arrived, and Duryodhana said, "Aha, nice to see you, but I'm here first."
और जब अर्जुन वहां पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें देखकर बहुत आनंद हुआ, लेकिन मैं यहां पहले पहुंच गया था.
And according to etiquette, I get to ask Krishna first to be on my side.
और सभ्यता यह है कि क्योंकि मैं पहले पहुंचा हूं, तो श्री कृष्ण को मुझे पूछने का हक पहला है.
Arjuna just prayed, Krishna, save me.
अर्जुन ने श्री कृष्ण से सिर्फ इतना कहा, मुझे बचा ले.
They both went into Krishna's room where he was sleeping, and Duryodhana immediately sat on a very luxurious raised seat right next to Krishna's head.
और फिर दोनों श्री कृष्ण के कमरे में गए जहां पे श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, और तुरंत दुर्योधन ने जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद के पास एक आसन लिया.
And Arjuna was so humble that he just sat on the floor next to Krishna's feet.
लेकिन अर्जुन इतने नम्र थे कि वो श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास में नीचे जमीन पर बैठ गए.
And when Krishna opened his eyes, he looked down and saw Arjuna near his feet.
और जब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली तो पहले उन्होंने अर्जुन को देखा.
And he was very happy. Oh Arjuna, I'm so happy you have come.
और अर्जुन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए.
But then he noticed Duryodhana right next to his head.
और फिर उन्होंने दुर्योधन को देखा.
Duryodhana said, Krishna, we have both come, but I have come first. So according to etiquette, you must fulfill my desire.
तो दुर्योधन श्री कृष्ण से कहने लगे कि कृष्ण हम दोनों आए हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहले पहुंचा हूं, तो सभ्यता यही है कि मुझे पहला प्रश्न.
And I want you to fight on my side during this battle.
और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी तरफ लेकर आप लड़ाई करें.
And Krishna said, but I saw Arjuna first.
तो कृष्ण ने कहा कि लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा था.
So it's a balance. You are both on equal terms.
तो आप दोनों एक समान स्तर पे हैं.
So I'll give a choice. On one side, I will give one Akshohini of soldiers who are all powerful, great warriors with great artillery, chariots, elephants. And on the other side, I will be, but I vow, I will not lift a weapon and I will not fight.
तो आपको ये चयन करना होगा कि एक ओर मेरी एक अक्षोहिणी सेना होगी और दूसरी ओर मैं स्वयं आऊंगा, लेकिन मैं वचन लेता हूं कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं.
So Arjuna said, Krishna, I don't want your armies, I don't want your fighting, I just want you.
तो अर्जुन तुरंत कहने लगे कि मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए.
If I have your mercy and your blessings, I will be supremely protected from everything.
अगर आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पे रहे तो मैं सुरक्षित रहूंगा.
And Duryodhana was very happy. He said, "Oh, wonderful, Arjuna, you fool."
और दुर्योधन बहुत खुश हो गए और कहने लगा कि बहुत ही अच्छा है, हे मूर्ख अर्जुन.
He was thinking like this.
वो ऐसे सोच रहा था.
He didn't say it. He was thinking.
ऐसे कहा नहीं, लेकिन सोच रहा था.
What is the use of Krishna if he's not fighting? I'll take his armies, his artillery, his elephants, his chariots.
तो दुर्योधन सोच रहा था कि श्री कृष्ण की अगर अपनी सेना के बिना है तो क्या फायदा है.
So in this way, Krishna completely satisfied both of them.
तो इस तरह से श्री कृष्ण ने दोनों को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया.
Duryodhana was thinking according to his material calculations how he will be successful. But Arjuna understood that it is only by the mercy and protection of God that we can be successful in this world.
तो दुर्योधन सब कुछ अपनी भौतिक दृष्टि से देख रहे थे कि सफलता किस तरह से प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन जानते थे कि भगवान की कृपा से ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है।
So on this auspicious day, we want to invoke the blessings and the grace of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, upon the child for protection, for mercy, and ultimately for spiritual purification.
तो इस मंगलमय दिवस पर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा की याचना करेंगे ताकि बालक के जीवन में हृदय का शुद्धिकरण चलता रहे.
The way we can show our real love and care is to invoke the presence of the Lord by the chanting of God's name.
अगर हमें हमारा प्रेम वास्तव में प्रकट करना है तो हमें भगवान नाम का उच्चारण करना होगा.
Where is he? Can Mataji can come? Menaka? Haribol.